तेल है और उनके पास न तो कोई दूसरा सहायता करने वाला होता है न कोई सामग्री रहती है बाहर। ऐसा नहीं कि पृथ्वी बनाना जब चालू किया, सूर्य चंद्रमा बनाना चालू किया तो कहीं से लाद लाद कर ट्रक से रेल से माल आया था और तब गांज कर पहाड़ बना दिए भगवान। ऐसा नहीं था। मकड़ा जब जाला निकालता है तो कहीं से खरीद करके कोई कपास या सूता नहीं लाता है, भीतर से पैदा कर देता है और कोई दूसरा नहीं होता है इसके साथ सृष्टि करने वाला। कितना बड़ा विश्व है, एक पृथ्वी पर हम लोग हैं, पृथ्वी की ही कितनी विशालता है, कितने बड़े बड़े समुद्र हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं और विविध नगर हैं, क्षेत्र है, खेत है, फैला हुआ कहीं बर्फ है, कहीं मरुभूमि है, कहीं कुछ है, और इस पृथ्वी से ही बड़े बड़े लोक सब फैले हुए हैं, वहाँ भी बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, विविध प्रकार के जीव हैं। इन सबकी अभिव्यक्ति कहाँ से है? भगवान नारायण के मुख से सब उत्पन्न हुए। और जिस समय भगवान इस विश्व को पैदा कर रहे थे तो उस समय उनका हेल्प करने के लिए कोई जीव नहीं था उनके पास, ब्रह्मा शिव या इंद्र आदि कोई सहायता कर, सबको उन्होंने पैदा किया। इसलिए सबसे पहले यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है, एक नारायण सहायांतर शून्य नारायण, नारायण कोई सहायक नहीं रखे, एक नारायण, एक नारायण देव जो क्रीड़ाशील है, सर्वसमर्थ है, ईश्वर है। वे पूर्व सृष्टम स्वमाया, अपनी माया द्वारा इस जगत की बहुत पहले सृष्टि किए थे, बारंबार सृष्टि करते हैं, तो संहार किस तरह करते हैं इसको कहने के लिए कहते हैं स्वमाया पूर्व सृष्टम इदम, इदम मतलब इदम जगत, इस जगत को काल कलया, अपनी काल नामक कला से, शक्ति से संघृत्य, संहार कर लेते हैं। संघृत का अर्थ है संहार, हार माने आहार, हार माने भोजन, उसमें आ लगा हुआ आहार मतलब, और संहार में दोनों का एक ही अर्थ हुआ, आ और सम का एक ही अर्थ होता है कभी कभी संस्कृत में, तो संहरती संघृत्य इसको खाया जाता है, अपने पेट के भीतर रखते हैं और सोते कहाँ हैं, शेष नाग के विशाल और सुंदर सज्जा पर सो जाते, तो गर्भोदक शाही की बात। और इसी तरह कारणोदक शाही भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों को खाकर सो जाते हैं, जैसे हम लोग रात में खा करके सोते हैं, थोड़ा सा खाते हैं लेकिन पचाने की ताकत नहीं होती, करें दाल अधिक पी लिया ये अधिक पी लिया, थोड़ा सा भोजन पचाने की शक्ति नहीं है। और भगवान नारायण संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों को खाकर ठाट से सोते हैं, हम लोग खाकर के सोते हैं वैसे ही भगवान भी सोते हैं, कितना दिन और कितनी गाढ़ निद्रा में सोते हैं, एपी सब कुछ उनका चिन्मय है, हम लोग जैसा तमोगुणी नहीं है भगवान, वहाँ प्रकृति की पहुंच नहीं है, और सोते हैं एक विशाल सर्प पर शेष नाग, बहुत सुंदर लगते हैं भगवान। कल्प के अंत कल्पांत, जैसे हम लोग दिनांत सोते हैं वैसे भगवान कल्पांत सोते हैं। कल्प का यहाँ अंतकार से ब्रह्मा जी की जब आयु बीतती है उस समय, अथवा ब्रह्मा जी का जब दिन बीतता है, तो जब ब्रह्मा जी की आयु बीतती है उस समय भी भगवान इस तरह एक ब्रह्मांड को खा करके सोते हैं। और जब संपूर्ण सृष्टि के विनाश का समय आता है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, तो उस समय वे कारणोदक शाही के रूप में सोते हैं, क्योंकि अब कोई काम धंधा भगवान को रहता नहीं, इसलिए खा करके सोते। और इतने सब सामान, नदी पर्वत पहाड़ लोक और जीव सब कहाँ चले जाते हैं? भगवान के भीतर सब चले जाते हैं। इसलिए अगले श्लोक में कहा गया एक एव अद्वितीय, बस अकेले रहते हैं और कोई नहीं, तो एक का अर्थ एक सजातीय भेद नहीं रहता है, इसका मतलब है कि भगवान का सजातीय है जीव चिन्मय, लेकिन दूसरा कोई भी जीव नहीं रहता है उस समय, भगवान के भीतर सब रहते हैं, ब्रह्मा शिव से लेकर के कीट पर्यंत जितने जीव हैं सब भगवान के भीतर रहते हैं, भगवान के अलावा उसमें कोई बाहर व्यक्त नहीं रहता है, इसलिए एकत्व। और अद्वितीय, द्वितीय विजातीय भेद कहते हैं, भगवान चिन्मय है और जो जड़ पदार्थ है वो विजातीय द्वितीय कहते हैं। तो उस समय जड़ पदार्थ भी कहीं कुछ नहीं रह जाता है, कोई जड़ पदार्थ नहीं रहता और कोई चिन्मय पदार्थ भी अलग बाहर उनसे नहीं रह पाता है, इस तरह वे सोते हैं, कारण समुद्र में सोते हैं। एक एवं अद्वितीय अभूत, उस समय अकेले हो जाते हैं, अद्वितीय हो जाते हैं। जबकि सृष्टि जब करते हैं तो उस समय अनंत कोटि जीव सजातीय भगवान के रहते हैं और अनंत प्रकार के पत्थर, पानी, हवा, आकाश ये सब रहते हैं। उस समय अद्वितीय भगवान नहीं रहते हैं, भगवान के विजातीय पदार्थ भी बहुत हो जाते हैं, जैसे पृथ्वी, मिट्टी, पानी, हवा ये सब विजातीय है और इन पंच भूतों से बने हुए सब शरीर विजातीय है। लेकिन प्रलय काल में भगवान ऐसे होते हैं, कैसे इस जगत की रचना करते हैं और किस प्रकार वे संहार कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं इसलिए समझो ईश्वर। वे समर्थ हैं, वे ईश्वर हैं, उनकी शक्ति अपार है। एक एव द्वितीय भूत आत्मा धारोखिलाश्रय कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्वादिस्वादि पुरुष प्रधान पुरुष स्वर। इसमें भगवान के अनेक गुण लिखे गए, नाम लिखे गए हैं, देखिए हम गिन रहे इस तरह। एक नारायण और देव, ये तीन हुए भगवान की विशेषता है। ईश्वर एक अद्वितीय आत्माधार अखिलाश्रय आदि पुरुष प्रधान पुरुषेश्वर परावराणाम परम कैवल्य संगीत केवलानुभवानंद संदोह निरुपाधिक, ये सब भगवान के नाम है। तो भगवान उस प्रलय काल में अद्वितीय रहते हैं, अकेले विराजते हैं और उस समय अथवा किसी भी समय में आत्माधार आत्माधार रहते हैं। आत्म आधार जो अपने से अपने को धारण करता है, अपना पालन पोषण करना या अपने को रखना, किसी तरह से आधारयति इति आधार जो बढ़िया से धारण करे। तो भगवान को कौन धारण करता है, भगवान कहाँ रहते हैं, आत्मा आधार। और जो व्यक्ति भगवान पर आश्रित हो जाता है, राम जिसके आधार हो जाते हैं उसको रामाधार कहते हैं। भगवान है आत्माधार और भगवान पर जो आश्रित हो जाता है उसको रामाधार कहते हैं, राम जिसके आधार हो जाते हैं। हम लोगों का आधार क्या है, तो देखिए किस किस वस्तुओं से हम जीवित हैं। पहले तो भूमि चाहिए हमारे आधार के लिए, नहीं तो कहीं भी गिर जाएंगे, मर जाएंगे। यह जो चौकी है वो हमारे भीतर से तो निकला नहीं, ये हमारी शक्ति नहीं है चौकी। ये जीवित रहने के लिए भात चाहिए, रोटी चाहिए, दूध चाहिए, वो भी हमसे हमारी शक्ति नहीं है। और कई प्रकार के कपड़े चाहिए ओढ़ने के लिए, घूमने के लिए, कहीं गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, हमसे उत्पन्न नहीं है, इसलिए हम पराधार पराश्रित हैं, दूसरे पर आश्रित। लेकिन भगवान है दूसरे पास आश्रित नहीं है, वे आत्माधार हैं, सब कुछ उन्होंने उत्पन्न किया है। भगवान तो अनादि काल के हैं, कई बार इस तरह से जीव पैदा होते हैं और मरते हैं। भगवान अनादि काल से हैं और जिस अवस्था के हैं वैसे ही हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च, वे सबके आदि हैं, पुराण पुरुष हैं लेकिन बिल्कुल नवजुवक हैं, किशोर अवस्था के हैं हाल तक। और उनके बाद जन्मने वाले, उनसे जन्म लेने वाले ब्रह्मा शिव कई बार घुलटियां मारे, कई ट्रिप, और ब्रह्मा शिव आदि के संरक्षण में रहने वाले जीव कितनी बार मरे, अभी ब्रह्मा शिव जी हैं ही, कितना बार मरेंगे कुछ देवता, और उन देवताओं के देख रेख में अभी कितने मनुष्य करोड़ों बार मर जाते हैं, और मनुष्यों के देख रेख में कीड़े पतंग मच्छर आदि हजारों बार मर जाते हैं, एक मनुष्य जब तक जीवित रहता है देखता है। तो ये कीट पतंग मर रहे हैं, मन पशु मर रहे हैं। जैसे एक मनुष्य के आयु काल में हम समझते हैं 4-5 कुत्ते मर जाते हैं ना, देसी मर जाता है, 5 साल कल जीवित रहते हैं। जो भी हो देखिए ये रिस्पेक्टिव तारतम्य में, और मच्छर की जिंदगी 2-3 दिन की होती है, 21 दिन अच्छा। और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनका केवल 1-2 घंटा तक जीवन रहता है, और कुछ ऐसे हैं जिनका केवल 1-2 मिनट। और मरने का प्रकार भी अजीब है। एक व्यक्ति परसों दिन बता रहा था कि जो वृश्चिक बिच्छू हैं तो वो कैसे मरते हैं, तो जब गर्भ होता है बिच्छू को तो उसके भीतर बिच्छू के जो बच्चे हैं वही उसके पेट को खा करके मार डालते हैं। ऐसा कोई आदमी कह रहा था कि हमने देखा है इस तरह से कि पेट फटा हुआ है खाया हुआ है। ऐसे मारने के भगवान का अनेक उपाय है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि भगवान अनादि पुरुष हैं, सबको वे जन्म देते हैं, उनके बाद सब जन्मते हैं मरते हैं, लेकिन वे जैसे के तैसे रहते, क्योंकि ये काल कर्म स्वभाव आदि सबसे परे हैं, प्रकृति से परे हैं, प्रकृति उनकी दासी है। तो कई बार यह जगत सृष्ट हुआ, कई बार नष्ट हुआ। जिस समय भगवान सृष्टि करते हैं तो उस समय न तो ब्रह्मा जी रहते हैं, न भगवान शिव रहते हैं, न इंद्र रहते हैं। ये बारी बारी से सब पैदा होते हैं। भागवत में क्रम सब दिया गया है, तृतीय स्कंध में, किस तरह ब्रह्मा जी हुए, किस तरह शिव जी हुए, किस तरह इंद्र होते हैं, और किस प्रकार मनुष्यों की सृष्टि हुई मनु महाराज द्वारा, ये सब क्रम लिखा गया है, दिखाया गया भागवत में। तो अपने द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं अकेले एक का। यदि आप किसी भी व्यक्ति को लाइए संसार में से, और मैं चैलेंज करता हूँ कि वो अकेले और कोई सहायता न करे उसकी, और वह एक घर बना दे अकेले। उसको मिट्टी नहीं लेना है, क्योंकि मिट्टी लेगा तो वो अकेला नहीं माना जाएगा। उसको कारक नहीं लेना है, करण नहीं लेना है। वो अपने मुंह से थूक निकाल निकाल कर एक घर बना दे है? हाँ अकेले। कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक अथवा कोई एक नहीं, संसार के सब लोगों को लाइए या कहिए, लाया नहीं जा सकता, और कह दीजिए कि भगवान की बनाई हुई धरती से कोई मिट्टी लेना है, न लोहा लेना है, न खरपात लेना है, न पेड़ लेना है। तुम लोग अपने देह से एक घर बनाओ, निकाल करके जो देह की सामग्री है वो तो क्या करेंगे। अगर भगवान का बनाया हुआ अन्न न खाएं तो देह से कुछ निकलेगा भी नहीं, देह भी खुद भगवान का दिया हुआ है, क्या बना सकते हैं। लेकिन इतना विशाल जगत को भगवान ने अकेले बनाया, और किसने, नारायण, नारायण ने बनाया, क्योंकि सभी जीवों के आश्रय, नर का अर्थ होता है जीव और नार का अर्थ होता है जीवों का समूह। तो नार का जो अयन है, आश्रय है, उसको नारायण कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने इस जगत को बनाया बहुत पहले सृष्टि की करते हैं, और कभी कभी कल्प के अंत में इसका संहार करते हैं। संहार करने में अजीब अजीब उनके पास जुगाड़ है, बहुत काल तक वर्षा करना, फिर सूर्य की गर्मी बढ़ा देना, सभी लोग मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी में सब देवता प्रवेश करते हैं, फिर ब्रह्मा जी भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, इस तरह की बात कही गई भागवत में। ये भगवान की संहार लीला है। एक एव अद्वितीय भूत आत्माधार, वह आत्माधार में इस शब्द पर कह रहा है, और हम लोग पराधार, पराश्रित, भगवान स्वाश्रित हैं, लेकिन अन्य जितने जीव हैं उनके आश्रय वे हैं। अखिला नाम आश्रय, अखिलाश्रय, खिला का अर्थ होता है अपूर्ण कम, और अखिल का अर्थ होता है पूर्ण, सबका, सबका आश्रय भगवान। हम लोगों का जन्म हुआ तो अपने लिए घर द्वार लेकर नहीं आए थे, मिट्टी लेकर नहीं आए थे, आकाश लेकर नहीं आए, कुछ भी लेकर नहीं आए, लेकिन यहाँ एक एक आदमी का सामान अगर इंक्वायरी किया जाए तो कितना कितना है, और वही वर्तमान में, पहले कितना फाड़ चुके कुर्ता कमीज और क्या क्या, कितना ब्रेड लगाए होंगे, कितना खाए पिए, सब किसका खा रहे, अपना लेकर आए थे या लेकर जाएंगे, कोई मरने लगे और उसको कहिए कुछ ले जाओ। तो अखिला नाम आश्रय, अखिला आश्रय, भगवान सबके आश्रय है, उनका कोई आश्रय नहीं, वो अपने आप अपना आश्रय। तो किस प्रकार से प्रलय करते हैं, आत्मानुभावे न काले न, काल जो उनका अपना अनुभव है, अपनी शक्ति है, उस काल के द्वारा प्रकृति के गुणों में वे साम्य पैदा कर देते हैं, सबको सम कर देते हैं, उसी समय सृष्टि ठप हो जाती है। शक्तिशु साम्यम नीतासु, साम्य अवस्था में ला देते हैं तो सृष्टि बंद हो जाती है और वे संहार करते हैं, वही आदि पुरुष हैं, भगवान नारायण ही आदि पुरुष कारणोदक साई के रूप में अपने को प्रकट करते हैं। कल्पांते इदं संघृत्य, तो भगवान समस्त प्रकृति के और जीवों के ईश्वर हैं, नियंता है, ऐसा नहीं कि संहार करने लगे तो कोई इधर उधर छटक कर बच गया पूरी प्रकृति ही जब खा जाते हैं, पूरा विश्व ही, तो उसमें कोई जीव कहाँ से बढ़ सकता है, तो सभी उनमें प्रवेश कर जाते हैं, और जब वे सृष्टि किए हैं इस समय भी सभी उनके भीतर ही हैं, सृष्टि के समय भी सब उनके भीतर ही हैं, प्रलय में भी उनके भीतर है, और सृष्टि जब करते हैं तब भी किसी भी समय में सारा जगत उनके भीतर है, फिर भी कुछ भी उनके भीतर नहीं, ये भगवान का ऐश्वर्य है। जब हम लोग अगर कोई सृष्टि करना चाहते हैं तो सबसे पहले भूमि देखते हैं, है ना, पहले भूमि चाहिए, लेकिन भगवान को जब सृष्टि करना हुआ है तो वो इस चिंता में नहीं पड़ेगी भूमि कहाँ से आएगी, जितना भी पहले से जो कुछ आकाश है तो उनके द्वारा सृष्ट आकाश है, वो सब उनके भीतर ही है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भीतर से इस जगत को प्रकट करने की एक लीला करते हैं। तो संहार इस तरह करते हैं, प्रकृति और पुरुष के जीव के ईश्वर हैं, कारणोदकशाही हैं, और परावरणम परम, पर यावर बड़े या छोटे समस्त जीवों के वही वास्तव में प्राप्तव्य है, परम का अर्थ है प्राप्तव्य, श्रीधर स्वामी जी लिखे प्राप्त, जीव के परम लक्ष्य वास्तव में वही है, वही परमानंद घन है, आनंद घन है, और उनको कैवल्य कहा जाता है, उस कैवल्य की भी व्याख्या कर रहे वास्तव में केवलानुभवानंद संदोह, भगवान आनंद और ज्ञान के घन है, जितने आनंद हैं, अनेक प्रकार के आनंदों का जो समूह है, संदोह है, संदोह मतलब समूह, जितने आनंद हैं सबके भगवान घनीभूत मूर्ति हैं, आनंद घन है, और इसीलिए ब्रह्मा आदि समस्त जीव भगवान को ही चाहते हैं, सबके वे लक्ष्य हैं, और निरुपाधिक, निरुपाधिक का अर्थ है कि भगवान में और कोई भी ज्ञान सिद्ध घनता के अलावा और कुछ नहीं है, या जीव है तो ये उपाधि से ग्रस्त, जैसे हम जीव हैं लेकिन आज पता नहीं लग रहा है हमारा, हम अपना परिचय देंगे तो शरीर से देंगे, तो जीव बहुत छोटा है और बहुत बड़ा, बड़ी उपाधि है, शरीर दी गई है, शरीर दिया गया है, नहीं भगवान इस तरह से नहीं है, ये पूर्ण चिद घन है, उपाधि से आवरण से हीन है, आनंद घन है। तो यहाँ तक संहार का वर्णन हुआ, और किस तरह वे सृष्टि करते हैं यह सुनिए, ये भगवान के जो गुण लिखे गए हैं वो सब समय उनमें रहते हैं। तो केवल आत्मानुभावे न स्वमाया त्रिगुणात्मिका, पुनः केवल आत्मानुभाव कह रहे, काल जो है उन्हीं की शक्ति है, जैसे भगवान जगत का संहार करते हैं तो सृष्टि करते हैं तो केवल अपनी शक्ति से और किसी की सहायता से नहीं, केवल आत्मानुभावेन। यदि मकरा इस जगत में नहीं होता तो भगवान के इस सृष्टि लीला को समझना बड़ा कठिन है। धन है मकरा को देखकर प्रणाम करना चाहिए कि ये भगवान के स्वरूप को व्यक्त कर रहा है। वास्तव में केवल आत्मानुभाव केवल अपनी शक्ति से भगवान इस त्रिगुणात्मिका सत्व रज तमय स्व माया को माया में क्षोभ पैदा करते हैं। जैसे पहले कहा गया कि गुण साम्य अवस्था में हो जाते हैं तो फिर किसी गुण को बढ़ा देते हैं, क्षोभित कर देते हैं। तो प्रकृति जो गुणमयी है इसमें क्षोभ पैदा करते हैं, गुणों में क्षोभ पैदा करते हैं। कब? आदौ कल्प के प्रारंभ में। और तब तया हे अरिंदम सूत्रम सृजति, उस माया के द्वारा सूत्र की रचना करते हैं। यहाँ सूत्र का अर्थ है महत्तत्व, और महत्तत्व का अर्थ है प्रकृति के क्षोभित गुणों में जीव को जब डाल दिया जाता है तो जीवों से युक्त जो प्रकृति के गुण हैं और क्षोभित गुण मतलब विषम गुण, इसको महत्तत्व कहा जाता है। और जब मतलब प्रकृति का ही नाम एक महत्तत्व हो जाता है, परंतु उस समय प्रकृति जीवों के साथ युक्त होती है। आप इस तरह से समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा खेत है तो खेत में कुछ बोया नहीं गया है तो खेत है कहेंगे, लेकिन जब बीज छींट दिया जाता है उसमें तो वह खेत बीज से युक्त है, तो वह जो अवस्था है बीज से युक्त खेत की उसको कहेंगे महत्तत्व। अब सृष्टि प्रारंभ होगी, क्योंकि सृष्टि का मतलब यह नहीं केवल ढेला विस्तार करना है, केवल जड़ पदार्थों को फैलाना है। भगवान इस प्रकृति के भीतर डालते हैं जीव को गर्भ के रूप में, तो फिर जीवों का देह बनना चालू होता है, कई कई तरह से डिजाइन बनने लगता है। बिना जीव के कोई भी पदार्थ डेवलप नहीं करेगा। किसी शरीर में यदि जीव ना डाला जाए तो शरीर बढ़ेगा नहीं, चेतना के कारण शरीर बढ़ता है। इसलिए सृष्टि, वो सृष्टि का अर्थ ही है जीवों को भोगायतन देह प्रदान करना, जीवों को देह देने के लिए भोगने के लिए भगवान देते हैं। लेकिन प्रकृति जब साम्यावस्था में रहती है तो उस समय उसके साथ जीव नहीं रहते, या रहते भी हैं तो उनमें कोई हलचल नहीं होती। जैसे हम लोग रात में सो जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऑफिस है दिन में काम होता है और उस ऑफिस में ही रात को सब ऑफिसर सो गए, तब उसको ऑफिस न कह करके सेनागार कहेंगे। मतलब एक तर्क की दृष्टि से कहा जा रहा है, अगर कोई कहे कि ऑफिस है, नहीं ऑफिस नहीं, उस समय क्या डॉर्मिटरी क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेनागार को क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो नाम है कुछ ऐसे डी से चालू, तो शयन कक्ष कहेंगे। और आप ये कहिए कि ऑफिस है तो ऑफिस का कार्य तो उस समय हो नहीं रहा है। तो जब है जीव बिल्कुल सुप्त अवस्था में रहते हैं, कोई क्रिया नहीं करते हैं भगवान की शक्ति से, और प्रकृति के गुण सम अवस्था में रहते हैं, तो उस समय प्रकृति का नाम होता है प्रधान। प्रधीयते अस्मिन् इति प्रधान, अस्याम् इति प्रधान, वहाँ प्रधान धीयते विलीयते, जिसमें विलीन होता है कुछ चीज उसको प्रधान कहते हैं। और जब जीव युक्त होते हैं, सृष्टि का समय आता है और जीवों का भोगायतन देना होता है, तो प्रकृति के गुणों से सने हुए मिलित जीवों को जीवों के साथ मिली हुई प्रकृति के गुणों को महत्तत्व कहते। तो महत्तत्व की सृष्टि किया उसी माया के द्वारा आदल ताम आहो त्रिगुणा व्यक्ति, उसी महत्तत्व को। यहाँ ताम स्त्रीलिंग वाचक है, सिद्धार्थ स्वामी जी कहते हैं कि सूत्रस्य एव व्यक्ति शब्देन उच्यमानस्य तामिति स्त्रीलिंगेन परामर्श। क्योंकि यहाँ व्यक्ति कहना है तो व्यक्ति स्त्रीलिंग है, अतः व्यक्ति शब्द आने के कारण सूत्र को ही यहाँ स्त्रीलिंग से विचार किया गया है। ताम का अर्थ तम सूत्रम। इसी सूत्र को महत्त्व को तीनों गुणों की प्रथम अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति का अर्थ है प्रथम अभिव्यक्ति। तीन गुण किस रूप में जगत किस रूप में होते हैं, पहले वे महत्त्व के रूप में होते हैं, इसीलिए यह जो महत्त्व है यही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। और यही महत्त्व या प्रकृति सृजन के इसी से विश्व की सृष्टि होने लगती। विश्व तो मुखम सावर 84 लाख जोनियों में जितने जीव हैं सबकी सृष्टि होने लगती है, ऋषि मुनि या पेड़ पौधे जो कुछ है। विश्व तो मुखम का अर्थ है कि जहाँ पर जो है जिस क्षेत्र में जैसे तैसे सब जगह सृष्टि होने लगती है, क्योंकि जीव सब जगह प्रकृति में व्याप्त हो जाते हैं। जैसे खेत के कोने कोने में बीज डाल दिया जाए तो बीज जो जमेंगे सब एक साथ जमने लगेंगे, इस तरह से होता है। तो विश्वतोमुखम का अर्थ सब प्रकार से सृष्टि होती है उससे महत्त्व से। जस्मिन प्रोतविदम विश्वम जैन संसर्ते पुमा, उसी महत्त्व में यह विश्व ओतप्रोत है और उसी के कारण जीव शरीर का योग और वियोग प्राप्त करता है। मतलब सृष्टि होती है तो प्राकृत पदार्थों को यह ढोना चालू करता है, देह मिलता है, कहने का मतलब यह है। और सृष्टि के पहले जीव को देह नहीं रहता है, वो सुप्त अवस्था में रहता है। जैसे सवेरे जगने के बाद कोई ऑफिसर या कुली अपने कोट कमीज सब धारण करके घूमना चालू करे, ऐसे ही जीव सब जग जग कर सपना अपना धोंधा माटी का ले करके जैसा जिसका शरीर है संसरण चालू होता है। फिर शरीर ग्रहण करना छोड़ना और बूढ़ा होना भूख प्यास का लगना ये काम करना वो काम करना, इसको संसरणम कर संसरते तुमा। तो इस ज्ञान को इस पूरे ज्ञान को पूर्ण नाभि मकरा के दृष्टांत साधित कर रहे हैं। जथा पूर्ण नाभि जैसे मकरा हृदयात अपने हृदय से पूर्णाम जाल को लार को संपत्य निकाल करके फैला करके वक्र पर मुख द्वारा फैला करके तया गृहित्य उस जाला के साथ विहार करता भूय स्थान ग्रसती, इसी प्रकार भगवान स्वयं ही अपने भीतर से विश्व को निकालते हैं और फिर कहा जाता है। तो विहृत्य का अर्थ पालन, भगवान सृष्टि करते हैं पालन करते हैं इसके बाद फिर संहार कर देते हैं, इस तरह भगवान नारायण सबके ईश्वर सर्वशक्तिमान। तो यहाँ तक पूर्णनाभि से शिक्षा हुई, अब सुपेश कृत से सीखिए। पहले नाम समझ लीजिए सुपेश का क्या अर्थ हुआ। सु का अर्थ है अच्छा और पेश का अर्थ है रूप, जो अपने द्वारा पकड़े हुए कीट के रूप को सुंदर बना देता है अपने जैसा बना देता है उसको सुपेश कहते हैं। सुपेश कृत सुपेश बना देने वाला। तो यह कीड़ा भृंगी नाम से कहा जाता है या हिंदी भोजपुरी में जो कुछ कहा जाता होगा, संस्कृत में इसको सुपेश कृत यहाँ कहा गया और संस्कृत में ही भृंगी नाम भी है इसका, जो दीवार में या वृक्ष आदि में घर बनाती है मिट्टी का बनाता है, पता नहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसा है, वो घर बनाता है। और जब वो घर बनाता है तो लोग उसको बड़ा अच्छा मानते हैं, है? बिलनी, हाँ हाँ ठीक, बिलनी भी प्रसिद्ध है। तो आपने उसके घर में कुछ द्वार भी देखा होगा, तो कहीं से वो पीट पकड़ करके लाता है वो कीड़ा, स्त्रीलिंग नहीं बोले ना लेकिन स्त्रीलिंग ने वहाँ भगवान इससे तुलना करनी है ना, तो कहीं से कीड़ा को पकड़ करके लाता है तो कीट इतना भयभीत हो जाता है, इतना भयभीत होता है कि रात दिन उसी का चिंतन करता रहता है। और जब कहीं से बाहर आता है, बाहर से भीतर घर में प्रवेश करता है, तब उसको देख करके कांपता रहता है, और कहीं चला भी जाता है तब भी कांपता रहता है भय के कारण। उससे निकल कर भाग भी जाना चाहिए, करना चाहिए वो करना चाहिए, उसको ये बुद्धि काम ही नहीं करते भय बस, और कहीं चला भी जाता है तब भी कांपता रहता है भय के कारण। उससे निकल कर भाग भी जाना चाहिए, करना चाहिए वो करना चाहिए, उसको ये बुद्धि काम ही नहीं करते भय बस, केवल भय से उसका चिंतन करता है। और इतना प्रगाढ़ चिंतन होता है कि चिंतन करते 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 वह अभी बिलनी का रूप धारण कर लेता है इसी शरीर से। इस प्रकार से यहाँ शिक्षा मिली उससे कि यह देही, यह शरीरधारी जीव या मनुष्य जत्र जत्र मनो धारे सकलम धिया, अपनी बुद्धि से जहाँ जहाँ अपने संपूर्ण मन को लगाता है, सकलम मन संपूर्ण एकाग्रता, अपने मन को पूरा पूरा जहाँ लगा देता है, जिसका चिंतन करता है, भले वो स्नेह से करे या द्वेष से करे या भय से करे, किसी भी तरह से चिंतन करता है जिसका, उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी के रूप वाला हो जाता है, जाति तत्त्व स्वरूप होता है, जो जो चिंतन करता है उसी का रूप धारण करता है। सकलम दिया पूर्ण बुद्धि से एकाग्र चित्त से, तब यहाँ पर यह शिक्षा दी गई है कि जब एक कीड़ा भृंगी का ध्यान करके भृंगी हो सकता है, तो क्या भगवान का ध्यान करके जीव भगवान जैसा रूप नहीं पा सकता है? ये शिक्षा में यह पा सकता है, भगवान जैसा सुंदर रूप द्विभुज या चतुर्भुज जिस रूप का चिंतन कर रहा है, अगर कोई प्राणी अनन्य मन से, भय से अथवा स्नेह से चाहे द्वेष से भी चिंतन करेगा तो वह भगवान का रूप पा जाएगा। तो उसमें आप लोग कभी प्रयोग कर सकते हैं कि जिस कीड़े को पकड़ करके बंद की है, देखिए वो कीड़ा उसी देह में उसके जैसा हो जाता है, बिना देह बदले। तो फिर वैष्णव या भक्त लोग देह बदल करके भगवान जैसा रूप प्राप्त करेंगे, इसमें क्या आश्चर्य है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, यदि उसके समान गाढ़ ध्यान कर दिया जाए तो इसी जीवन में ये देह भगवान जैसा सुंदर हो सकता है, लेकिन वैसा चिंतन संभव नहीं, इसलिए देह बदल करके होता है। किसी किसी को इसी देह में हो जाता है, जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज का यह देह ही भगवत पार्षद का देह हो गया, चाहे गजेंद्र का देह हो गया, वो तो भगवान के स्पर्श से हुआ, लेकिन ध्रुव महाराज का तो चिंतन से हुआ। और दूसरे जन्म में वह रूप प्राप्त होता है जिसका चिंतन करते हैं, इसके तो बहुत उदाहरण है, जैसे राजर्षि भरत, भरत जी इस जन्म में हरिण का चिंतन किए, हरिण का चिंतन करते हुए ही शरीर छोड़ दिए तो हरिण हो गए। तो क्या भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने पर भगवान जैसा रूप नहीं हो जाएगा? बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगा। तो सुपेशकृत से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान का ही चिंतन रात दिन करना चाहिए, अगर स्नेह से करे तो ठीक ही है, नहीं कंस जैसा भय से भी करे तब भी रूप मिलेगा भगवान का, और शिशुपाल जैसा, रावण जैसा द्वेष से भी, रावण नहीं, शिशुपाल जैसा द्वेष से भी चिंतन करे या हिरण्यकश्यपु जैसा तो मिल जाएगा भगवान का रूप। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का दिन रात चिंतन करता था, एक सेकेंड भी नहीं भूलता था, लेकिन द्वेष से, कृष्ण हमारी पत्नी को ले गया, रुक्मिणी को ले गया, हमारा विवाह होने वाला था, मैं इसकी जान मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो बहुत बलवान है, झूठ है, अपने मामा को मारा है, ये किया है वो किया है, रात दिन कृष्ण को गाली देता रहता है, वो दूसरी चर्चा करता ही नहीं था, हमेशा कृष्ण 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 करता रहता था। जब राजसूय सभा में भगवान ने उसका वध किया सुदर्शन चक्र से,
तो वह भगवान कृष्ण जैसा रूप वाला हो गया उनके धाम। वैसे तो पहले से ही भगवान का पार्षद था, लेकिन बीच में ये दशा हुई थी, पुनः पार्षद हो गया। कर्ण से भी इसी तरह से भगवान का पार्षद हो गया। तो भय से चिंतन करता था। देवताओं ने कह दिया था आकाशवाणी में कि देवकी का आठवां लड़का तुम्हारा वध करेगा, तो भगवान कहीं चिंतन करता था हमेशा। विष्णु से उसे बहुत भय था। भोजन करता था तो उस समय भी डरता रहता था, क्यों बंद करो, ये करो, वो करो, उधर देखते रहो, अरे उधर आ रहा है, ऐसा करता था। अभी सोने चलता था तब तक दो मिनट के बाद ही क्यों बंद है ना, वो हमें मार देगा, ये करेगा, वो करेगा। एक बार मारे थे भगवान उसको कालनी में जब बना हुआ था, दुरासु संग्राम में मारे थे। इतना भय कंस को होता था, इतना भय होता था, उसी भय के कारण वो अपने भांजों को मारा था कि कहीं इसी रूप में वो हमारा शत्रु न आया जाए। अपने बहन भानोई को जेल में बंद किया था, ये किया था, वो किया था, हमेशा कांपता रहता था भय से। तो भागवत में लिखा गया है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अखाड़ा में कंस का वध किए, उस दिन वह भगवान का पार्षद बनकर उनके धाम में चला गया। यह है भगवान के चिंतन का प्रभाव। तो भय से चिंतन कर रहा था। और वास्तव में इस संसार में देखा गया है कि मनुष्य द्वेष से जितना चिंतन करता है अपने विपरीत आदमी का, प्रेम से अपने प्रेमी का उतना चिंतन नहीं कर पाता है। ये नारद जी का शोधित मत है। नारद जी ने कहा है इस बात को, आपका किसी से अगर वैर है, किसी बात के चलते उससे बहुत नहीं बन रही है, कंपटीशन जैसा हो गया है, जलन है, ये है वो है, तो उसी का चिंतन रात्रि होगा। उतना तो चिंतन आदमी अपनी स्त्री और बच्चे का नहीं करता है जितना अपने दुश्मन का है ना। ये संसार में प्रसिद्ध बात। तो भगवान का चिंतन चाहे द्वेष से किया जाए, चाहे स्नेह से किया जाए, चाहे भय से किया जाए, वो जीव का हित होगा, वो भगवान का रूप प्राप्त करेगा। अभिनिवेश चाहिए। गीता पे संस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः। जिस कीड़े को सुपेशकृत पकड़ करके लाता है, भृंगी पकड़ करके लाता है, तो वह कीड़ा भृंगी का चिंतन करता है। जाति तत्सात्मताम राजन पूर्व रूपम असम त्यजन, और उसी जीवन में उसका रूप धारण कर लेता है। पूर्व रूपम असम त्यजन तत्सात्मताम राजन, यह रूप का अर्थ है शरीर। पूर्व रूपम, पूर्व शरीर बिना छोड़े ही इसी शरीर में वह ढृंगी जैसा हो जाता है। जाति तप सात्मताम हे राजन। तो इस तरह से यह सिद्धांत स्थापित हुआ। यहां से उधर स्वामी लिखते हैं, भगवत ध्यान पराणाम तत्सारूप्यम न चित्रमिति पेशस्कृतो भ्रमर विशेष ज्ञातम इत्याह। भगवान का जो रात दिन ध्यान करते हैं, भगवान पर जिनकी चित्तवृत्ति रहती है, नाम जपते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, तो उन्हें भगवान जैसा सुंदर रूप मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह भृंगी के द्वारा यहाँ शिक्षा दी जा रही है। जत्र जत्रेति सकलम एकाग्रम, इतना ही अर्थ लिखे। कुड्यम प्रवेशितो निरुद्धो भयेन ध्यायन सात्मतां तत्सारूप्यम जाति पूर्व रूपम असंत्यजन इति अस्याम अभिप्राय। जदा ते नैव देहेन अन्य सारूप्यम दृश्यते तदा किम वक्तव्यम देहांतरेण सारूप्यम घटता इति। जब इसी देह से हमें दूसरे का रूप मिल सकता है गार चिंतन से, तब देह छोड़ने के बाद उसका रूप मिल जाए, इसमें तो कहना ही क्या। इसलिए जैसे तैसे हो भगवान कृष्ण पर मन को रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये शिक्षा है। स्नेह, द्वेष या भय, आदमी किसी का भी चिंतन करता है तो यही मुख्य प्रधान है उसमें। माँ अपने बच्चे का चिंतन करती होगी स्नेह से, यही संसार में कोई प्रेमी अपने प्रेमी का चिंतन करते हैं स्नेह से, और कुछ लोग किसी का चिंतन करते हैं द्वेष से। ज्यादातर चिंतन यही है द्वेष और भय से। कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार इंदौर में एक व्यक्ति आया, कुछ वर्ष पहले की बात, इंदौर में सागर में, वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है उस क्षेत्र का, दो नंबर का नहीं, वो बहुत डाकू। तो हम लोग उसका नाम सुने थे और ऐसे देखे नहीं थे, तो आकर तो कथा में बैठा था। कथा जब खत्म हो गई तो प्रणाम करने आया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फलाना है, तो मुझे भय लगने लगा, नाम का इतना प्रभाव हुआ। और जब तो बिल्कुल छोटा जवान, कुर्ता पहना था नेता जैसा लंबा पैजामा, बिल्कुल छोटा, कोई शक्ति नहीं, लेकिन कितना जस फैला था उस विषय में, भय लगने लगा। और मैं गया अपने बेड पर तो उसी का चित्र याद आ रहा था, तो मैं डॉक्टर से कहा कल नहीं आएगा ना, कल हमारे कथा में नहीं आएगा ना, तो नहीं महाराज तो ऐसे आ गया था ऐसे। तब जा करके पता नहीं, क्यों मैं ये नहीं जानता था हमको कुछ करेगा, लेकिन फिर भी उसका नाम सुन करके देख करके उसको भय होने लगा। तो भय बस कुछ मिनट तक चिंतन हुआ, भय से कितना चिंतन होता है हम लोगों का अनुभव है। घूमे हैं जहाँ तहाँ, सुनते थे कि इधर पार्टी है तो भय होने लगता था, चिंतन होता था, भय से भी बहुत चिंतन होता है। तो चाहे भय से, स्नेह से, क्रोध से, किसी भी तरह से भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। यह अर्थ जम जम वापी स्मरण भावम तेजन तंते कलेवरम तम तमय वेति कौंते सदा तद भाव भावित। जो चिंतन करते हुए हम मरेंगे वही रूप मिलेगा आगे चलकर। इसलिए अभी से भगवान को देखने का अभ्यास करना चाहिए। देख कर का स्मरण होता है, सुन कर स्मरण होता है, पढ़ कर स्मरण होता है, और हम लोगों के लिए तो स्नेह से स्मरण करना ही संभव है। भगवान से कौन द्वेष करेगा, किसकी ऐसी ताकत है कि रावण जैसा भीड़ जाए भगवान से, ऐसा तो किसी की ताकत है नहीं। एक व्यक्ति हमसे कहा कि महाराज जब द्वेष से भी भगवान मिल जाते हैं तो रावण जैसा हम भी द्वेष करेंगे। मैंने कहा कि तुम रावण जैसा द्वेष करोगे दूसरा व्यक्ति एक तमाचा मार देगा मर जाओगे तो क्या होगा। वो कहा कि भगवान मारेंगे तो हमारी गति हो जाएगी। तो मैं कहा तुम इतने बलवान हो गए कि भगवान आएंगे तो कोई भी व्यक्ति तुमको मार देगा। रावण तो ऐसा था कि बिना भगवान के उसको कोई मार ही नहीं सकता था, इसलिए भगवान को आना पड़ा, और भगवान मारे तो उसकी गति हो गई। लेकिन यहाँ कोई भगवान से द्रोह करे तो भगवान के भक्त ही मार डालेंगे उसको, जमराज मार देते हैं और मार दिया जाता है तब क्या होगा। और भगवान से डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए स्नेह पूर्वक चिंतन करना चाहिए, चाहे उनको स्वामी मानकर, पुत्र मानकर, प्रियतम मानकर, जैसे भी हो सखा मानकर चिंतन करना चाहिए। इस तरह चिंतन का एक प्रभाव है। भय बस वह कीड़ा भृंगी का चिंतन करके इसी जन्म में इसके स्वरूप वाला हो जाता है, तो फिर भगवान का चिंतन करके क्यों नहीं उनका स्वरूप मिल जाएगा। यह भृंगी से हमने सीखा है। एवं गुरुभ्य एतेभ्य ऐसा में शिक्षिता मति। अब समस्त गुरुओं से सीख करके और उपसंहार कर रहे हैं कि एतेभ्य गुरुभ्य इन प्रकार का कॉन्शियसनेस मेरा बना है, इनसे मैं ये सिखाऊं। स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं श्रृणु में बद्धतः प्रभो। हे समर्थ जदु महाराज, हे प्रभु आप समर्थ है, सब समझ जाएंगे। अपनी आत्मा से जो मैं बुद्धि सीखा हूँ, आत्मा मैंने देह, उसको सुनिए। मतलब ये देह जो है 25वां गुरु है। मैं बद्धतः प्रभु का क्या है अभिप्राय है? अभिप्राय यह है कि जितने गुरु हुए वे एक एक शिक्षा दिए, लेकिन देह से दुगनी शिक्षा मिलती है। विवेक और वैराग्य एक ही साथ मिलता है, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए मैं बदता मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, अर्थात सावधानी से सुनिए। अन्य गुरु की बात तो आपने सुना, लेकिन उससे और ज्यादा सावधानी से सुनिए, क्यों कि ये सबसे बड़े गुरु हैं। ये देह सबसे बड़ा गुरु है, और अन्य समस्त गुरुओं की अपेक्षा यह आपके साथ ही लगा हुआ है। इस गुरु से संग छूट नहीं रहा है चंद्र, और इसी गुरु की सेवा में जीवन जा रहा है। इसलिए इस गुरुदेव की बात सुनिए। यह गुरु ऐसा है, अपने शरीर से सबको सीखना चाहिए। स्वात्मना मतलब देहात, देह से शिक्षा सुनिए। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रात्म सत्व निधनं सततार्थ दर्कम तत्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम संगः। देह मम गुरु, देह मेरा गुरु है। मेरा गुरु किसका गुरु? आत्मा का गुरु। यह जड़ पदार्थ आत्मा का गुरु है। देखिए, देह मम गुरु क्यों गुरु है? गुरुत्व हेतु विरक्ति विवेक हेतु। देह मेरा गुरु इसलिए है कि यह विरक्ति और विवेक देता है, वैराग्य और ज्ञान देता है, यह विवेक देता है। तो गुरु वही है ना जो विरक्ति दे और वैराग्य दे, अरे विरक्ति दे और विवेक दे, वही गुरु है ना। तो विरक्ति विवेक हेतु या विरक्ति और विवेक देने वाला है, इसलिए हमारा गुरु है। अच्छा ठीक है, क्या विरक्ति देता है इसको बता रहे हैं। विरक्ति हेतु त्वमः, विरक्ति इस तरह से देता है कि सत्व निधनम विभ्रत, यह हमेशा जन्म और मरण को ढो रहा है। इसका जन्म हुआ है और मरेगा, एक दिन बना है और एक दिन नष्ट होगा। जब हम यह विचार करते हैं तब इस सोच करके वैराग उत्पन्न होता है कि ये शरीर चला जाएगा। इसके साथ जन्म और मरण लगा हुआ है। सत्व मतलब जन्म और निधन मतलब मरण। जन्म मरण होगा, उत्पत्ति और विनाश होता है इस शरीर का। जब विनाश हो जाएगा तब तो गैरागार है बात सुन करके। अब जन्म भी हुआ है, जन्म लेने में बड़ा दुख हुआ है। अच्छा, सतत आरती उदरकम, और सदा ही इस शरीर का उत्तर फल क्या है, बाद में क्या परिणाम आता है, तो आरती दुख। यह शरीर केवल दुख देता है आत्मा को, इसे कोई सुख नहीं मिलता है, हमेशा दुख देता है। अथवा सतत आरती रेव उदर का उत्तर फलम जस्य प्रति, सर्वदा दुख देता है। सतत आरती उदर कम, जीव वास्तव में शरीर से विलक्षण है। अगर शरीर के भीतर न रहे तो उसको कोई दुख नहीं होगा, अलग रहे तो। जीव शरीर के साथ है, इसलिए आज दांत का दर्द है तो कल पेट में दर्द है, तो ये ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। वास्तव में आत्मा प्रकृति के पदार्थों से अलग है, लेकिन शरीर के कारण भोगता कौन है? आत्मा। समान लीजिए दांत में दर्द हो रहा है तो यह दुख किसको हो रहा है? देह को दुख नहीं हो रहा है, देही को दुख हो रहा है, देह वाले को दुख हो रहा है। आया है आत्मा करता है। जब वो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चला जाए तो सीधे आग में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी आग देह छटपटाता नहीं। या कोई काटे तो आया नहीं करेगा, क्योंकि जिसको दुख हो रहा था उसे चला गया। तो क्यों दुख हो रहा था? शरीर के कारण दुख हो रहा था, नहीं तो शरीर से परे। तो शरीर में जब तक आत्मा है केवल आत्मा को ये दुख देता रहता है शरीर सर्वदा। तो इस इन दो कारणों से ये मुझे, मैं दो प्रकार के उपदेश से मुझे वैराग्य देता है, मतलब जब मैं ये विचार करता हूँ तब वैराग्य होता है। अच्छा, तो विवेक क्या देता है? विवेक हेतुत्वम वह विवेक यह देता है इसलिए कि तत्वानि अनेन विमृशामि यथा तथापि। विवेक यह है कि यही देह ऐसा है जो तत्वों की प्राप्ति कराता है। तत्व मतलब भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम गुण जपना है तो इसी जीव से जपेंगे। ये देह नाशवान है लेकिन इसी जीव से उनका नाम जपेंगे, इसी हाथ से उनकी सेवा करेंगे, इसी आंख से दर्शन करेंगे। इतना वैल्यूएबल यह देह है कि इसी से भगवान को जाना जा सकता है, उनसे प्रेम किया जा सकता है। तो यह है विवेक। एक तरफ तो इतना एक कंडम है उसकी सीमा नहीं, और एक तरफ इतना उपादेय वस्तु है, इतना लाभकारी है। तो ये मैं विवेक सीख रहा हूँ, इससे ज्ञान ले रहा हूँ। यही भक्ति देने वाला है, प्रेम देने वाला है भगवान के प्रति, है कि नहीं? जब देह है तभी ना भगवान को प्रणाम करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका प्रसाद खाएंगे, जिह्वा से नाम बोलेंगे। तो जिह्वा शरीर का एक अंग है। तो इस तरह से तत्व ज्ञान देता है, भगवान की भक्ति देता है शरीर। अच्छा, इसके बाद भी कुछ भी दे, इस पर एक प्रश्न होगा कि ठीक है, जब इतना विवेक दे रहा है शरीर, वैराग दे रहा है, तब तो इस गुरुदेव की खूब सेवा करनी चाहिए ना। तो कहते नहीं, इतने के बाद भी यदि ये गुरुदेव ज्ञान देते हैं, वैराग देते हैं, लेकिन तथापि फिर भी पारक्य नीति अवस्थित। मैं जानता हूँ कि यह पारक्य है, ये सियार और कुत्ते का भोजन है। आज या कल ये गिरेगा और इसको सियार चाहे कुत्ता खाएंगे। इसलिए गुरुदेव जी से असंग ही मैं रहता हूँ, मैं इसमें अटैच्ड नहीं हूँ। अरे, इतना बड़ा ज्ञान विवेक दे रहा है, वैराग दे रहा है, तो ऐसे गुरु में आसक्त होना चाहिए ना, आसक्ति से सेवा करनी चाहिए। चक्रवर्ती पादी लिखे ना, ना अगर इस गुरु की सेवा खूब आप माल से करने लगिए, सहलाइए, खिलाइए, पिलाइए, तब तो का उपदेश भी नहीं करेगा, बल्कि और संसार महांध कूप में झोंक देगा। यह गुरु ऐसा है कि इसकी ज्यादा सेवा नहीं करनी है। सेवा कितनी करनी है कि जिससे गुरु जी चलते रहे, थोड़ा अन्न डाल दिया, कुछ वस्त्र पहन लिया, बस सेवा हो गई। इसका कारण यह है कि इति अवसित, मैं निश्चित वाणी निश्चय कर चुका हूँ, जानता हूँ कि ये पारक्य है, ये दूसरे का देह है, दूसरे के काम में आएगा। चाहे कुकुर खाएगा, चाहे गिद्ध खाएगा, सियार खाएगा, अथवा धरती के अंदर जाएगा, अथवा आग के हवाले होगा, ये मैं जानता। इसीलिए इस गुरु की सेवा बिल्कुल अनाशक्ति से करनी है। इतना ही करना चाहिए कि ये तत्व का उपदेश कर सके, जप आदि करे, ये नहीं कि सोया रहे गुरु। ये गुरुजी मंगल आरती में आवे और जीव को ढो करके लावे। इस तरह से ये देह मेरा गुरु है, इससे मैं विरक्ति सीखता हूँ और ज्ञान भी लेता हूँ, बहुत लाभ। विवेक का अर्थ है हानि लाभ का विवेचन जब करता हूँ, तो इस शरीर के समान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इतनी उपादेय हो। अध्यम शरीरम खलु धर्म साधन, सबका मूल यह शरीर है। या गुरु कह करके यह करें कि शरीर को सुख देना है, इसकी सेवा करनी है, लेकिन बहुत हिसाब से। अगर बिल्कुल सेवा नहीं करेंगे तब भी ये गुरु जी गिर जाएंगे, और न तो जप करेंगे न भागवत पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और ज्यादा कर दीजिए दो चार करोड़, अधिक दे दीजिए, तो फिर और ही तत्व का उपदेश नहीं करेंगे। चक्रवर्ती पादी टीका में पढ़ रहा हूँ, सुनिए। स्वदेहादपि शिक्षितमिति विवेक हेतु हेतुत्वम तत्वानि इति जथा इति जथा तत्वानि विमर्शामि। तत्वानि श्रोत्रादि इंद्रियवता अनेनैव श्री भगवत प्रापक श्रवण कीर्तनादि मयम् भक्ति जोगमपि प्राप्नोमि इत्यर्थ। इसी शरीर से श्रवण कीर्तन आदि भक्ति जोग भी प्राप्त करता है। तो जथा कश्चित रसिको महाभक्त सर्व रसा स्वाध्यापि रसलिप्त। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई महान भक्त है, रसिक है, तो अनेक प्रकार के रसों को प्राप्त करता है, लेकिन भक्ति योग में ही वो अधिक आसक्त होता है, रंगता है। जैसे जिह्वा है, जिह्वा बहुत बहुत चीज खाती है, जैसे घी है, दूध है, फल है, बहुत खाती है, लेकिन किसी के रंग में रंगती नहीं है। लेकिन जब यह पान खाती है तो रंग रंग आ जाती है, अरुणा हो जाती है, लाल हो जाती है ना। तो पान के रंग पे ग्रहण कर लेती है। तो मैं विचार कर रहा हूँ कि वास्तव में इस देह से तो पाप भी होता है, बहुत चीज हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं शरीर का उपयोग भगवान की भक्ति में ही किया जाए, उसी में इस शरीर को रंग लिया जाए। ये विवेक मैं सीखा हूँ कि कोई अगर ज्ञानी आदमी होगा तो शरीर का उपयोग भगवान के भजन में करेगा, सेवा में करेगा, और नहीं तो इसी देह से नरक भी कमाया जाता है। देह को का उपयोग करेंगे तो भगवान का धाम पाएंगे, नहीं तो इसी से नरक में भी गिरेंगे। लिखा गया है कि जस्मात् अपवर्ग साधक एव मनुष्य देह श्रेष्ठ तस्माद् एनम नरक साधनम न कुर्यात्। ये भगवान का प्रेम कमाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए शरीर दिया गया है, न कि नरक में ले जाने के लिए। तो जो नरक में गिरते हैं वो भी मनुष्य देह के कारण गिरते हैं। गाय भैंस आदि नरक में नहीं जाएंगे, मनुष्यों को ही पकड़कर नरक में ले जाया जाता है। तो अपने शरीर को नरक साधन नहीं बनाना चाहिए। तो इस प्रकार इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। यह शरीर गुरु है। पारक्यम आद्य सोवा स्वसृगाल आदि भक्ष्यम इत्यवसितम निश्चय जस्मिन। आज चाहे कल शरीर जाएगा और इसको कुत्ते सियार आदि खाएगी, इसलिए मैं इसमें आसक्त नहीं हूँ। तब यहाँ प्रश्न उठता है कि ननु विरक्ति विवेक भक्ति योग प्रदातु सर्वेषु अपि गुरुषु श्रेष्ठस्य। जब यह देह विरक्ति विवेक और भक्ति दे रहा है तब तो ये सबसे बड़ा गुरु है, गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ है, तो इसकी सेवा परम आसक्ति से करनी चाहिए ना। नश्वर है मैं मानता हूँ, लेकिन अस्य देहस्य नश्वरस्य अपि सेवा परमाशक्तैव कर्तुं युज्यते। परमाशक्ति से ही करना ठीक है, अन्यथा कृतघ्नत्व लक्षण दोष इति। अन्यथा कृतघ्नता का दोष लगेगा तब कहते हैं कथम असंग, तो फिर क्यों आप कहते हैं कि अनाशक्ति से सेवा करेंगे। तब कहते हैं अयम विचित्र चरित गुरु, ये गुरु विचित्र चरित वाला है। परमाशक्त्या सेव मानो अयम विवेक वैराग्यादिकम किमपि नोपदिशति। अगर परम आसक्ति से इसकी सेवा की जाए, खूब खिलाया नहलाया और सेवा किया जाए, कपड़ा पहनाया जाए, पंखा डुलाया जाए इस गुरु को, तो ये विवेक वैराग्य आदि का कुछ भी उपदेश नहीं करेगा। प्रत्युत संसार महांध कूपे एवं निक्षिपति। अगर इसकी सेवा की जाएगी तो यह अपने शिष्य को, जीव को और संसार महांध कूप में ढकेल देगा। तो क्यों आसक्ति से सेवा की जाए, जब सेवा करने पर ढकेल देगा कुकुर, तो इसकी आसक्ति से सेवा नहीं करनी है। जस देहस्य प्रिय चिकित्सा दयादिन वितन्वन, तो इसलिए इसकी काम भर सेवा करनी है। तस्मात् अस्मय गुरवे देहाय केवलम प्राण धारण मात्रम भोजनम देयम। इस गुरु की केवल इतनी सेवा करनी है कि प्राण धारण कर सके बस। और तदपि अनाशक्त्या एव, और वो भी जो भी भोजन देना है प्राण धारण करने के लिए, वो भी अनाशक्ति से। यही अस्य गुरुर शुश्रूषा, यही इस गुरु की सेवा है। सेवा है कि मतलब जब भूख लगे तो इनको कुछ दे दीजिए, कुछ पहना दीजिए, ठंडा से बचा दीजिए गुरु जी को, बाकी असक्त होकर नहीं, पूरा अनाशक्ति से। लेकिन कुछ लोग तो इस गुरु की सेवा कर रहे हैं, इसे लाभ भी नहीं ले रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, तो उनको महासंसार अंधकूप में फेंकेगा, दे अज्ञान में और डाल देगा। इस प्रकार इस देह से विरक्ति और वैराग्य सिखाया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसी समय खत्म कर दूं, अभी रात के लिए कथा बाकी रखना चाहता हूँ। दो चार लोग छोड़ देता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे कथा खत्म हो गई है। तो इसलिए अभी कथा है। गुरु की कथा तो हो गई।